चाहत ने आहान से शादी के लिए हाँ कर दी थी, तो शिवानी ने भी ज़्यादा टाइम नहीं लिया और उनकी शादी का मुहूर्त निकलवा लिया था। उनकी शादी अगले हफ्ते होने वाली थी और उससे पहले आहान और चाहत की एंगेजमेंट थी, जहाँ वो पूरी मीडिया के सामने अपने और चाहत के रिश्ते को ऑफिशियल करने वाला था। चाहत इन सब में काफ़ी नर्वस हो रही थी। वो यूनिवर्सिटी में श्रद्धा के साथ थी और उसे शादी और बाकी सब चीज़ों के बारे में बताया। पहले तो श्रद्धा उसी से काफ़ी नाराज़ हुई, क्योंकि अब तक चाहत ने अपने और आहान के रिश्ते के बारे में उसे भनक तक नहीं होने दी। श्रद्धा ने चाहत की तरफ घूरकर देखते हुए कहा, डाउट तो मुझे पहले से ही था, मुझे लगा तू खुद से आकर बताएगी, लेकिन नहीं, कर दिया ना तूने मुझे पराया, बोलते हुए श्रद्धा चाहत की तरफ पीठ करके बैठ गई। चाहत ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और बोरियत भरे लहजे में कहा, लिसन, मैं ऑलरेडी बहुत इरिटेट हूँ, मुझे और इरिटेट मत करो, अब बता तो दिया है, तुम नाराज़ होना छोड़ो और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करो। मुझे कुछ नहीं सुनना है, श्रद्धा चाहत की तरफ मुंह करके बोली। सच सच बता तो उनके साथ कब से रिलेशनशिप में है? तभी वो निशा आंटी का इलाज करवा रहा था और तुमने हम सबसे झूठ बोला। सोच अगर आंटी को पहले पता होता तो वो कितनी खुश होती और अपनी आंखों से तुम दोनों की शादी होते देखती। निशा का जिक्र आते ही चाहत की पलकें नम होने लगीं। उसने जल्दी से अपनी आंखों के कोने को साफ किया और श्रद्धा से बोली, उस वक्त हमारे बीच में कुछ नहीं था, मम्मा के जाने के बाद ही हम दोनों का बॉन्ड अच्छा हुआ है, आहान ने मुझे हर तरीके से सपोर्ट किया है। हाँ तो थोड़ा टाइम दो खुद को, इतनी जल्दी शादी करने की क्या ज़रूरत है, श्रद्धा ने कंधे उचका कर कहा। हम दोनों तो टाइम देना चाहते थे, लेकिन उनकी मॉम चाहती है कि हम शादी कर लें। ठीक है, उनका कहना भी गलत है, इस तरह बिना शादी के एक साथ रहना सही नहीं होता, ऊपर से आहान की पब्लिक इमेज काफ़ी अच्छी है, तो मैंने हाँ कह दिया है, चाहत ने मुँह बनाकर जवाब दिया। हाँ तो फिर प्रॉब्लम क्या है, जब तुम्हें शादी से दिक्कत नहीं है, आहान की फैमिली शादी के लिए तैयार है, खुद आहान भी तुमसे शादी करना चाहते हैं, तो फिर क्यों मुंह बनाकर बैठी है, श्रद्धा ने सिर हिलाकर पूछा। चाहत ने कुछ पल रुककर जवाब में कहा, यार नर्वसनेस हो रही है, ऐसी बात नहीं है कि मुझे आहान से कोई प्रॉब्लम है, मैं उनके साथ रही हूँ, उनका बिहेवियर मुझे अच्छे से पता है, वो मेरी बहुत केयर करते हैं, पर मुझे उनकी मॉम को देखकर डर लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे शादी के बाद वो ये कहने वाली हैं कि अब शादी हो गई है तो बच्चे भी पैदा कर लो, मेरा करियर और बाकी सब कुछ बीच में रह जाएगा। आहान अपनी मॉम से बहुत प्यार करते हैं, वो नहीं मना करेंगे किसी चीज़ के लिए। चाहत काफ़ी मासूमियत से श्रद्धा को सब कुछ बता रही थी। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, श्रद्धा जोर से हंस पड़ी। उसकी इस हरकत पर चाहत गुस्से से उसकी तरफ देख रही थी। श्रद्धा ने अपनी हंसी को कंट्रोल किया और फिर चाहत के सिर पर हल्का सा मारते हुए कहा, तुम्हें शादी से नहीं बल्कि अपनी सास से डर लग रहा है, जो हर लड़की को लगता है। डोंट वरी, आहान से सब कुछ पहले ही क्लियर कर लेना। चल अब घिसी पिटी बातें करना बंद कर, कल शाम को एंगेजमेंट है तो क्या पहनने वाली है? मुझे डिज़ाइनर ने कुछ पिक्चर्स भेजी थी, उसी में से मैंने सेलेक्ट कर लिया है, अभी मुझे स्पा के लिए निकलना है और तू मेरे साथ चल रही है, मैं कुछ नहीं सुनने वाली, चाहत ने श्रद्धा का हाथ पकड़कर कहा और उसे ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाने लगी। आहान ने बहुत पहले ही चाहत को अपने कार्ड दे दिए थे, लेकिन उसने कभी उन्हें यूज़ नहीं किया। आज आहान ने उसे घर से स्ट्रिक्ट वार्निंग देकर भेजा था कि वो अब खुद को उससे अलग समझना बंद कर दे। कुछ ही देर में चाहत और श्रद्धा स्पा में थी, जहाँ दोनों ब्यूटी ट्रीटमेंट ले रही थी। उनकी सगाई मुंबई के ही किसी 7-स्टार होटल में होने वाली थी और वहाँ मीडिया को भी इन्वाइट किया गया था। चाहत नहीं चाहती थी कि उसकी शादी में मीडिया वगैरह इन्वॉल्व हो, इस वजह से आहान में पहले एंगेजमेंट तो बाद में रिसेप्शन पार्टी में मीडिया को इन्वॉल्वमेंट डिसाइड किया था। जिस पल का शिवानी को बेसब्री से इंतजार था वो आ गया था। आज शाम आहान और चाहत की सगाई होने वाली थी, वो काफ़ी खुश थी। चाहत की तरफ से उसका कोई रिलेटिव नहीं आया था तो वो थोड़ी उदास भी थी, लेकिन श्रद्धा के साथ होने पर उसे कहीं ना कहीं तसल्ली भी मिल रही थी। चाहत श्रद्धा के साथ होटल के एक कमरे में थी। मेकअप आर्टिस्ट चाहत को तैयार करने के बाद जा चुकी थी। उसके जाते ही चाहत ने खुद को आईने में देखा। उसने ऑफ वाइट कलर का इवनिंग गाउन पहना हुआ था, जो कि ऑफ शोल्डर था। गले में एमरल्ड ग्रीन डायमंड का पतला सा नेक पीस और कर्ली हेयर करके चाहत के बालों में साइड में मैसी बन बनाया हुआ था। वो इस लुक में बिल्कुल किसी प्रिंसेस की तरह लग रही थी। श्रद्धा ने उसके कान के पीछे काला टीका लगाते हुए कहा, तुम्हें और तुम्हारी खुशियों को किसी की बुरी नज़र ना लगे। आई नो फिलहाल मैं एक आंटी की तरह साउंड कर रही हूँ, लेकिन खुशियों पर दूसरों लोगों की नज़र लगते देर नहीं लगती। श्रद्धा ने एंगेजमेंट पार्टी के लिए घुटनों तक का ब्लैक फ्रॉक पहना हुआ था, जो पार्टी के हिसाब से काफ़ी अच्छा लुक दे रहा था। श्रद्धा और चाहत बातें कर रही थी, तभी वहाँ आहान पहुँचा। उसने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था जिसके साथ व्हाइट शर्ट था। चाहत को देखते ही आहान की नज़रें उस पर ठहर गई थी। वो कुछ नहीं बोला तो श्रद्धा ने कहा, मैं बाहर हूँ होने वाले जीजू, आप इसे लेकर आ जाना। श्रद्धा मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। वहीं आहान जिस तरह से इंटेंसिटी से चाहत को देख रहा था, चाहत ने अपनी नजरें झुका ली। आहान उसके पास आया। आहान ने चाहत को उसकी कमर से पकड़कर अपने करीब किया और उसके सिर से अपना सिर जोड़ते हुए कहा, अब मेरा एंगेजमेंट करने का नहीं कुछ और ही करने का मन कर रहा है। आहान की बात सुनकर चाहत के गाल लाल हो रहे थे। वो कुछ कह पाती उससे पहले आहान ने अपने होंठ चाहत के होठों पर रख दिए थे। उसने चाहत के होठों पर हल्का सा किस किया और फिर अलग होकर कहा, चलो नीचे चलते हैं वरना तुम ऐसे ही मेरे साथ अकेली रही तो मेरी नीयत खराब हो जाएगी। आहान ने चाहत का हाथ पकड़ा और उसे नीचे हॉल में लेकर गया। पार्टी काफी लैविश थी तो उसी के हिसाब से वेन्यू को डेकोरेट किया गया था। आफ्टरऑल मुंबई के वन ऑफ द टॉप बिजनेसमैन आहान ओबेरॉय की सगाई थी, ऊपर से वो किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं था। आहान और चाहत को साथ में देखकर सभी उनकी फोटोज क्लिक करने लगे। उन सब के बीच चाहत की नजर सामने खड़ी अपनी नानी पर गई तो उसने आहान की तरफ देखा। आहान के चेहरे पर हल्की स्माइल थी और वो मीडिया को पोज दे रहा था। चाहत को अपनी तरफ देखता पाकर आहान ने उसकी तरफ देखकर धीमी आवाज में कहा, मुझे ऐसे मत देखो डॉल, तुमसे इस हद तक प्यार किया है कि किस वक्त तुम क्या फील करती हो मुझे समझ आ जाता है। तुम अपनी फैमिली को मिस कर रही थी, मैं तुम्हारी मम्मा को वापस नहीं ला सकता, पर नानी उन्हें तुम्हारी एंगेजमेंट में आने का पूरा हक है। आई लव यू सो मच आहान, पता है मैंने आपको शुरुआत में बहुत गलत समझा था, धीरे धीरे समझ आया आप गलत नहीं हो, आपकी बीमारी गलत थी जिसके चलते आप इतने अग्रेसिव हो जाते हो। आप दुनिया के बेस्ट इंसान हो आहान, जो कभी किसी के साथ कुछ गलत कर ही नहीं सकता, चाहत ने जवाब दिया। उसने दुनिया की परवाह भी नहीं की और आहान के गाल पर हल्का सा किस कर लिया। उनकी ये फोटो एक परफेक्ट पिक्चर बन गई थी। थोड़ी देर बाद आहान और चाहत ने रिंग्स एक्सचेंज की। केक कट होने के बाद आहान और चाहत डांस करने के लिए फ्लोर पर आए। उन्हें साथ में खुश देखकर तनु ने आयुष से कहा, किसने सोचा था कि आहान ओबेरॉय को किसी से प्यार होगा, दोनों साथ में कितने प्यारे लग रहे हैं ना।
आयुष ने मुस्कुराकर हां में सिर हिलाया और फिर चाहत और आहान की तरफ देखने लगा। वेन्यू की लाइट डिम हो गई और सबकी नजरें डांस फ्लोर पर टिकी थीं। आहान ने चाहत को अपने करीब खींचते हुए उसकी कमर पर हाथ रखकर सिंग किया, दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे हैं तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम, हाँ सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम, ना सीखा कभी जीना जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। डांस करते हुए चाहत ने आहान की उंगली पकड़ रखी थी और वो गोल गोल घूम रही थी। आहान के फेस पर हल्की स्माइल थी। आहान ने चाहत की आंखों में देखते हुए कहा, सच्ची सी है ये तारीफें दिल से जो मैंने करी हैं, जो तू मिला तो सजी है दुनिया मेरी हमदम, हो आसमां मिला जमी को मेरी आधे आधे पूरे हैं हम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम, हाँ सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम, ना सीखा कभी जीना जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। पार्टी अपने जोरों पर थी तो वहीं उनकी सगाई और उससे जुड़ी हुई पिक्चर फिलहाल की ब्रेकिंग न्यूज थी। दूसरी तरफ दानिश आहान के फार्म हाउस में दामिनी की निगरानी रख रहा था। विजय वहां पहुंच तो गया था लेकिन इतनी सिक्योरिटी के बीच उसे नीचे आने का मौका नहीं मिला था। दानिश का ध्यान अपने मोबाइल में था और उसे देखकर उसने हल्का मुस्कुराकर कहा, चलो भाई आज हमारे बॉस ने सगाई कर ली है तो पार्टी तो बनती है। वैसे भी आहान सर ने कहा था कि इसके ऊपर से नजरें मत हटाना, पार्टी का इंतजाम उन्होंने पहले ही कर दिया है। बोलते हुए दानिश ने अपने एक आदमी को स्टोर रूम की तरफ इशारा किया। कुछ देर के बाद वो एक बॉक्स लेकर आया जिसमें महंगी शराब थी। उनका ऑर्डर किया हुआ खाना भी आ गया था। वो लोग वहां बैठकर अपनी पार्टी कर रहे थे तो वहीं दामिनी गुस्से में अपने नाखून चबा रही थी। उसने मन ही मन कहा, हमारी जिंदगी बर्बाद करके तुम वहां खुशियां मना रहे हो आहान ओबेरॉय, मेरी बद्दुआ है तुम्हें कि तुम जिंदगी में कभी खुश नहीं रहोगे। तुमने खुद से अपनी एंगेजमेंट की पार्टी दी है, इसका मतलब जिस किसी से भी तुम शादी कर रहे हो उसके साथ तुम खुश हो, देखना वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। तुमने मुझे और विजय को अलग किया है तो एक दिन तुम भी अलग हो ही जाओगे, जैसे मेरा बच्चा यहाँ तकलीफ में बिना अपने बाप के साये में पल रहा है वैसे ही तुम्हारा बच्चा भी ऐसे ही तकलीफ में रहेगा। वो कहते हैं ना, कई बार दुआओं से ज्यादा बददुआएं असर करती हैं। दामिनी की तरह ही वहां एक और शख्स मौजूद थी जो दिल ही दिल में आहान को बददुआ दे रही थी और वो थी अक्षरा गोयंका। उसने भी उन लोगों की बातें सुन ली थी और इस वक्त अक्षरा के दिल के हजारों टुकड़े हो रहे थे। अक्षरा के रोने की आवाज बाहर तक ना आए इसके लिए उसने अपने मुंह को कस के दबा दिया और वो फूट फूट कर रो जा रही थी। उसने सुबकते हुए कहा, मैंने तुमसे प्यार किया था आहान और तुमने मेरे साथ ये किया, मुझे यहाँ इतने दिनों से किडनैप करके रखा है और वहाँ किसी और से सगाई कर रहे हो? नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी। मैं अपनी जगह किसी को नहीं लेने दूंगी आहान ओबेरॉय। मैं अपनी जगह किसी को नहीं लेने दूंगी। तुम्हारी वाइफ बनने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है। अब तक अक्षरा ने खुद से कोई कदम उठाने का नहीं सोचा था, पर आज आहान की सगाई का सुनकर वो अब चुप नहीं रह सकती थी। भले ही आहान ने उसके साथ कुछ भी किया हो, लेकिन वो दिल से उसके साथ शादी करना चाहती थी। आज अपनी जगह किसी और को लेता देखकर अक्षरा के दिल की नफरत गुस्से में बदल गई और अब उसे किसी भी हाल में वहां से बाहर निकलना था। अक्षरा ने अपनी चेयर पर खड़े होकर बाहर की तरफ देखा तो उसे विजय दिखाई दिया, जो उधर ताक झांक कर रहा था। उसने बाल कट कर लिए थे और शेव कर ली थी, इस वजह से वो पहचान में आ रहा था। विजय को वहां देखकर अक्षरा के चेहरे पर चमक आ गई और वो अब जानती थी कि उसे बाहर निकलने के लिए क्या करना था।